ये आकाशवाणी है। अब आप विकास मेहरोत्रा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूटान के नेताओं के साथ बातचीत से दोनों देशों की मैत्री और प्रगाढ़ होगी। प्रधानमंत्री ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि भारत अगले 5 वर्ष में भूटान को 10,000 करोड़ रूपये की सहायता देगा। भूटान की यात्रा के पहले दिन थिम्पू में श्री मोदी ने भूटान नरेश को आश्वासन दिया कि दोनों देश आपसी संपर्क, आधारभूत अवसंरचना, व्यापार, ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में अधिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को बेतुका बताकर खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का भूभाग है। कल सिंगापुर में दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान के कार्यक्रम में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर अपने स्पष्ट रुख को बार बार दोहराता रहा है। उन्होंने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है, चीन पहले भी ऐसे दावे करता रहा है। भारत और चीन की उभरती वैश्विक स्थिति पर विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे सामने चुनौती यह है कि दोनों उभरती ताकतों के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को मंजूरी देने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित समिति के सदस्य और राज्यों के पदाधिकारी शामिल हुए। समिति ने 3 घंटे से अधिक समय तक उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श किया। कांग्रेस ने अपनी यूपी इकाई के प्रमुख अजय राय को वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने कल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। सांसद दानिश अली यूपी की अमरोहा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जबकि कीर्ति चिदम्बरम शिवगंगा सीट से और मणिकम टैगोर तमिलनाडु की विरुद्धनगर संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ दी है। कांग्रेस ने आगामी सिक्किम विधानसभा चुनावों के लिए 18 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप लगाया है। श्री ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने के लिए केजरीवाल की आलोचना की। भाजपा नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में सत्ता में आने पर मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने की बात करते थे, लेकिन संगरूर में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। रूस में क्रॉकर सिटी हॉल पर हुए आतंकवादी हमले में मरने वालों की संख्या 133 हो गई है। रूसी जांच समिति के हवाले से सरकारी मीडिया तास ने बताया कि तलाशी अभियान जारी है और कॉन्सर्ट हॉल से मलबा हटाया जा रहा है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 147 लोग घायल हुए हैं। रूस ने कहा कि उसने कल 4 बंदूकधारियों के साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज श्रीनगर में 4 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार करके प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। बैडमिंटन में भारतीय स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत आज रात स्विट्जरलैंड के बेसल में स्विस ओपन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। श्रीकांत 1 घंटे और 5 मिनट तक चले पुरुष एकल सेमीफाइनल में लिंग चुन यी से हार गए। किदाम्बी श्रीकांत के बाहर होने के बाद स्विस ओपन में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रन से हरा दिया। जीत के 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 204 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 208 रन बनाए। कोलकाता के आंद्रे रसेल ने 25 गेंदों पर नाबाद 64 रन बनाए, जबकि हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने 29 गेंदों पर 63 रन का योगदान दिया। कोलकाता के हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, जबकि हैदराबाद के टी नटराजन ने 3 विकेट लिए। आंद्रे रसेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज दोपहर 3:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा, जबकि शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा।